الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. كم از كم تین مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. ایک شعر سے شروعات کرتا ہوں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. بزرگان محترم مولانا اقبال صاحب سے تو بہت پرانی پہچان ہے, لیکن آج ان کی ایک نئی پہچان ہوئی کہ بہت اچھی نظم بھی پڑھ لیتے ہیں. جب وہ راشٹر گیت گا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ نام کا اثر تو آتا ہی ہے, اقبال ان کا نام ہے. پھر انہوں نے ہم لوگ جب سیڑھی پر ہمارے محترم کرم فرما چشتی صاحب کے ساتھ پہنچ رہے تھے تو شاید میرے نام سے پہلے انہوں نے ایک شعر کا ایک مصرع گایا تھا. آپ آئے باہر آئے, ہم تو چاہتے ہیں کہ باہر نہیں آئے گھروں ہی میں رہ رہے. اس لیے کہ ان کا باہر آنا کسی بھی صورت میں کتنے سے خالی نہیں ہے. اسی لیے جو ہماری دینی بہنیں چھتوں پر سے اس طرح بے پردہ نظر آ رہی وہ شرائط بالکل مناسب نہیں ہے, برائے کرم وہ پردے کا لحاظ رکھیں. دوستو یوم جمہوریہ, دل چاہتا تھا کہ گجراتی میں آپ سے خطاب کروں لیکن سارے حضرات اردو میں بولے تو پھر میں آگے لگا کیوں گجراتی نہیں بولوں. اسی لیے اردو بولوں گا لیکن گجراتی اردو بولوں گا. چشتی صاحب میری اس استادی کو معاف کریں گے, عزیز آدمی ہے, صاحب قلم ہے, صاحب اردو ہے. میری مجبوری ہے کہ مجھے اپنے مخاطبین کو اپنی بات سمجھانی ہے. اور ہمارے یہاں ہر چیز میں سیل ہو رہا ہے لیکن اب تک اردو زبان میں کوئی سیل نہیں آیا ہے. یہ اردو کی پراتھمک شالائیں ہائی اسکولیں قائم ہو رہی ہے لیکن ابھی تک ہماری بول چال میں اردو کا چلن نہیں ہے. دوستو گنتنتر دیوس یہ 66 ہوا 67 ہوا गणतंत्र दिन है, लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ दो तीन बातें कहूंगा। काश के जहां तक मुझे पहुंचानी है अल्लाह इस बातों को पहुंचा दे रहे। मैं चिश्ती साहब की बात से 101% मुत्तफिक हूं कि हम लोग जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह, जैसे मौलाना इकबाल साहब का जौक है, ऐसे ही तमाम प्रोग्राम यहाँ पेश हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मुसलमान, बहुत ही प्यारे तहकीकी ऐतिहासिक वो तकरीरें थी। दोस्तों, दिल चाहता था कि ये बातें हम अपनों से ज्यादा उनको सुनाएं। जो मुल्क की आजादी के 66 साल के बाद भी आजादी के हीरो लोगों से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हो, यार दुख की बात मैं कह रहा हूं, दिल की जलन पेश कर रहा हूं, दिल जल रहा है और दिल के अंदर ये दर्द है कि जिन लोगों ने मुल्क को आजाद कराया, आज आजादी के 66 साल के बाद उनके पास मुल्क की वफादारी के सबूत के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। यह आजाद हिंदुस्तान की बड़ी दुखद घटना कही जाएगी। और दूसरी शिकायत अपनों से, भाइयों, जो शायर ने कहा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, हर पत्ते को मालूम है, हर कली को मालूम है, लेकिन ये फूल जो मेरे सामने खिले हुए हैं इनको ही नहीं मालूम कि इस चमन की खुशबू हम हैं। चिश्ती साहब ने जो बात फरमाई उसको आगे बढ़ाता हूं। नौजवानों, अपना इतिहास पढ़ो, अपनी हिस्ट्री का वाचन करो। इस मुल्क के लिए तुम्हारे बाप दादाओं ने जो कुर्बानी दी है, इस मुल्क की कोई दूसरी कौम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे और आपके बाप दादाओं ने इस मुल्क की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी, कोई दूसरी कौम उसकी बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन दुख ये है कि आज हमारे ही लोगों को मालूम नहीं है। पढ़ो, वांचन करो, रिसर्च करो, रातों को रास्तों पर चौरों पर बैठकर कर गपशप में टाइम को बर्बाद करने के बजाय किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, वांचन करो, स्टडी करो। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, उस कौम को दुनिया से मिटाना आसान हो जाता है। जो कौम अपने वड़ीलों के, अपने बड़ों के इतिहास को याद रखती है, दुनिया की कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती। अज़्म लेके उठो, इरादे लेकर उठो कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क के खातिर जो कुर्बानियां दी है उसको हम पढ़ेंगे, वांचन करेंगे, रिसर्च करेंगे और उसको उन लोगों को बताएंगे जो आज हमको शक की नजरों से देखते हैं। कब उनसे सवाल करो, 1857 की जंग के अंदर अंग्रेजों ने फांसी पर किसको चढ़ाया, सवाल तो करो। कौन थे जिनके लिए दिल्ली से लेकर मेरठ तक हर दरख्त के ऊपर फांसी का माचड़ा लटकाया गया था, कौन थे जिसके लिए एक ही निशानी थी कि जिसके चेहरे के ऊपर लंबी दाढ़ी हो, जिसके बदन के ऊपर कुर्ता हो, हर उस इंसान को पकड़ के इस फांसी के माचड़े पर लटकाओ, वो पक्का हिंदुस्तानी है, वो नेशनलिस्ट है, वो पक्का भारतीय है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, लंबा जुब्बा हो। अंग्रेज ने ऐसे 4.5 लाख मुसलमानों को फांसी के माचड़े पर लटकाया था, आज उन्हीं दाढ़ी और कुर्ते वालों को शक की नजर से देखा जा रहा है। हजरत, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमें अपना इतिहास मालूम नहीं। मुसलमानों को वफादारी का सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं। हम तो, मैं कहा करता हूं, 22-24 मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, 22-24 हम इंडियन हैं, 22-24 हम भारतीय हैं। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, हमारे सामने चॉइस थी कि वहां जावे कि यहां रहे। चॉइस थी मुसलमानों के सामने, और जाने वाले गए, लेकिन हमारे उन बड़ों की कब्रों पर खुदा की करोड़ रहमतें नाजिल हो, जिन्होंने फैसला किया था कि हमारा जीना और मरना हिंदुस्तान में होगा। हम बाय चांस इंडियन नहीं है, हम बाय चॉइस इंडियन है, भारतीय है, अपनी पसंद से। आज हम इसको फखर के साथ लोगों के सामने कहते हैं। हजरात, मेरे बदन में वो खून दौड़ रहा है जिन्होंने मुल्क के पार्टीशन का विरोध किया था। हम नहीं थे पार्टीशन का मुतालबा करने वाले, और मौलाना आजाद की किताब क्यों गायब की जाती है मार्केट से, क्यों मौलाना आजाद की किताब को छपने नहीं दिया जाता, कि जिन्होंने सारी बातें लिखी कि पार्टीशन और मुल्क के टुकड़े कराने के हीरो कौन लोग थे, वो कौन काले कोयले थे जिन्होंने इस मुल्क के टुकड़े कराए। खुदाए पाक की कसम, हुसैन अहमद मदनी, हिफ्जुर रहमान सिहारवी, अबुल कलाम आजाद, ये हिंदुस्तान के वो हीरो हैं जिन्होंने इस मुल्क को आखिरी घड़ी तक टुकड़े होने से रोका था। हम नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो गए और मुल्क के टुकड़े बने, हम हर चीज भी चाहते थे। और बुजुर्गान महतरम, 1600 ईस्वी की बात कर रहा हूं, वहां से 1690 ईस्वी तक अंग्रेजों ने इस मुल्क के अंदर बिजनेस, तिजारत, कारोबार के नाम से अपना नेटवर्क कायम किया। ये पूरे 90 ईयर्स, 90 वर्ष, 1600 से 1690 तक ऐसे गुजरे कि जिसमें अंग्रेजों ने पूरे मुल्क में बिजनेस, तिजारत के नाम से अपना नेटवर्क कायम किया। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को, जैसा चिश्ती साहब ने इशारा दिया, इस मुल्क में फैक्ट्रियां कायम करने की 2-3 इजाजत दी, जिसकी आड़ में उन्होंने कारोबार और बिजनेस के नाम पर हमारे मुल्क को गुलाम बनाया है। और आज हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर उंगलियां उठाई जाती है। मैं दिखलाता हूं आपको, चलो मेरे साथ। आज भी ऐसे ऐसे हिंदू गांव हमारे पास मौजूद है, जिस हिंदू गांव में पूरे बस्ती में एक भी मुसलमान न हो, लेकिन उस हिंदू गांव के मंदिर के वास्ते औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जागीर लिख करके दी है। आज की बात कर रहा हूं, जहां 100% हिंदू रहते हो, ایسے گاؤں کے مندر کو چلانے کے لیے نبا کے لیے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی بڑی زمینیں جاگیر میں لکھ کر کے دی ہے, اور وہاں کے مندروں میں حضرت اورنگزیب کی دستخط اور مہر کے ساتھ وہ دستاویز موجود ہو گئے. 1707 عیسوی میں ہندوستان کے اس عظیم سپوت حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اورنگزیب جب تک زندہ تھے کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ ہندوستان کو غلام بنانے کی بات کر سکے. تنے تنہا وہ برا آدمی بڑھاپے کے اندر انگریزوں سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے. پتا کی قدرت 1707 میں حضرت اورنگزیب کا انتقال ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے 1703 عیسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی 1731 عیسوی میں میدان عمل میں آئے. اور آج بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کو اسلامی حکومت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں, چاہتے تھے, جھوٹ ہے, تہمت ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پر. حضرت کے سیاسی مکتوبات چھپے ہوئے, پولیٹیکل لیٹرز چھپے ہوئے. حضرت کے سیاسی مکتوبات کو اٹھا کے دیکھو. شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے زمانے میں نواب نجیب الدولہ کے نام پر ایک خط لکھا. اس خط میں صاف لفظوں میں لکھا کہ اپنی فوج کو, اپنی آرمی کو یہ کہہ دو کہ دلی کے اندر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, کسی کو ستائے نہیں, کسی کو پریشان نہ کرے. یہ تحریر آج بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی سیاسی مکتوبات میں موجود ہے کہ حضرت کو غیر مسلموں اور ہندوؤں کے ساتھ رواداری کا کتنا خیال تھا, وہ ان کے حقوق کی کتنی رعایت کرتے تھے. محترم حضرات, کالا پانی کی بات چل رہی تھی, وہ حضرات کالا پانی کی جیلوں میں زندگی گزار کے گئے, اور آج ہم کالا پانی پینے سے فرصت ہم کو نہیں ملتی. کالے پانی کی باتیں کرتے ہیں, کیسی سزائیں آپ سن رہے تھے, کیسی سزائیں 1864 سے لے کر 1871 تک پانچ بڑے بڑے اسٹیٹ ٹرائل انگریزوں نے چلایا, اور اس کے اندر ہزاروں مجاہدین آزادی, ہندوستان کی آزادی کے ہیرو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. جب مولانا جعفر تھانیسوری, مولانا یحییٰ علی, مولانا محمد شفیع لاہوری رحمہ اللہ, ان حضرات کو انگریز ججوں نے پھانسی کی سزا سنائی, خوش ہو گئے اور خوشی میں کہنے لگے کہ یہ تو وہ چیز ملی جس کا انتظار کرتے تھے. ملک کے خاطر پھانسی کی سزا کا اس کا تو انتظار تھا, کب ہم کو پھانسی کی سزا ہو. جب ان کی خوشی کی خبر انگریزوں کو ہوئی تو انہوں نے سزا میں تبدیلی کی اور کہلوایا انگریز جج نے کہ تم کو پھانسی سے بڑی محبت ہے, تم پھانسی کی سزا سے خوش ہوتے ہو, ہم تمہاری خوشی کی چیز ختم کر کے ہم تم کو کالا پانی کی جیل کی سزا کرتے ہیں. یہ لوگ کروڑوں سلام ہو مولانا جعفر تھانیسری, مولانا یحییٰ علی, مولانا محمد شفیع لاہوری, کہ جو ملک کی آزادی کے خاطر پھانسی کو چوننا, پھانسی کی سزا پانا جن کی زندگی کی بڑی خوشی کی چیز سمجھی جاتی تھی, بلاخر انگریزوں نے ان کی خوشی کی چیز ختم کر کے ان کو کالے پانی کی سزا دی. محترم حضرات, مہاتما جی, گاندھی, नमक सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, उनको पूछो तो सही कि तुमको हीरो किसने बनाया, कौन तुमको आगे लाया। ये महात्मा का लकब कोई मुझे हिस्ट्री के हवाले से तो बतला दे कि गांधी जी को दिया किसने। एक पेरिस्टर मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, इसको महात्मा का लकब देने वाले हजरत मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह थे। आज गांधी चेक कहते हैं, है किसी के पास गांधी जी का कोई फोटो जिसने सर पर टोपी पहनी हुई हो? फिर ये गांधी के पाई कहां से? ये तो हकीम अजमल खां मरहूम की कैप है। किसी जलसे में हकीम साहब ने वो टोपी गांधी जी के सर पर रख दी, तब से इसका नाम मशहूर करवाया कि ये गांधी कैप है। हकीकत में वो हकीम अजमल खां मरहूम की कैप है। हजरात, गांधी जी के शब्द है। और मैं नहीं कहता, हमारी गुजरात सरकार ने एक पुस्तिका छपवाई है, गुजरात सरकार की तरफ से छपी हुई। उस पुस्तिका के अंदर मेरे पास मौजूद है वो बुक, उसमें लिखा एक नी 16 सफे के अंदर ये तस्करा मौजूद है कि उस जमाने में जब महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा लेकर के हमारे यहाँ नवसारी और हमारे डाबरेली मदरसे के बाजू में धामण नाम का एक गांव है, 100% हिंदुओं का गांव, वहां पहुंचे तो उस जमाने में डाबरेली मदरसे के आलिमों में हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, मुख्य अतीफुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह वहां गए, गांधी जी से मुलाकात की और डाभेल आकर हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से मुजाकरा करके वो हदीस जिसमें इस तरह के टैक्स के ऊपर पाबंदी लगाना, इस तरह की चीजों पर टैक्स लगाना, पाबंदी लगाना, ये हदीस की रोशनी में मना है, वो हदीस लिखी, गांधी जी को ले जाकर पेश की। दूसरे दिन नवसारी की जाहिर सभा में महात्मा गांधी जी के अल्फाज थे, कल डाभेल के मौलवियों ने आकर मुझे हदीस दी और उस हदीस से मेरी चरवड़ को एक नई ताकत नसीब हुई। ये गांधी जी के शब्द थे। हजरात, इस मुल्क की आजादी के लिए एक नहीं लाखों मुसलमानों ने, हजारों मौलवियों ने, उलमा ने जान की, कुर्बानियां दी, जेल को अपने सजदों से आबाद किया। कौन है जिसने मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर माल्टा की काली कोठरी में सख्त अंग्रेजों की सजाएं भुगती? शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस मुल्क के खातिर अंग्रेजों की जेलों में सख्त से सख्त सजाएं बर्दाश्त की। और मेरा ये जुमला याद रख लेना, हमारे बुजुर्गों ने मुल्क की आजादी में जो कुर्बानियां दी उसको उन्होंने अपने मजहब इस्लाम का एक हिस्सा समझा, अपनी दीनी जिम्मेदारी समझी, धार्मिक जवाबदारी समझी कि ये हमारे दीन का एक हिस्सा है कि हम मुल्क को आजाद कराने के वास्ते कुर्बानियां दें। इन्होंने इसको इबादत समझा, इसको नेकी समझा और दीन का एक हिस्सा समझ करके इन्होंने मुल्क की आजादी के वास्ते कुर्बानियां दी। यही तो बात कि जिनको आज हम अपना सब कुछ मानते हैं, हुज्जत इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की, हजरत हाफिज जामिन शहीद, हजरत मौलाना मोहम्मद मजहर साहब नानोतवी, क्या बात थी कि 1857 में शामली के मैदान में अंग्रेजों के मुकाबले में उतरे, शहीद हुए, शहादत हजरत हाफिज जामिन शहीद और उनके साथियों को नसीब हुई। बस जरूरत है हम अपनी शानदार माजी, शानदार भूतकाल, हमारा शानदार इतिहास पढ़े और आज दुनिया को बताए कि हम तो इस मुल्क की, इस बहार की असल खुशबू है। हजरत गिरामी, बहुत सारी बातें बच्चों ने और हमारे मोहतरम चिश्ती साहब ने बयान कर दी। मैं दो तीन अहम बातों की तरफ आप हजरात की तवज्जो मंजूर कराना चाहता हूँ। एक मर्तबा आजादी के बाद एक ट्रेन में कुछ लोग सफर कर रहे थे, उसमें कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे और एक आध दो अंग्रेज बैठे हुए थे एक टीचर में। और जो बात अभी हो रही है वही चर्चा चली वहां पर, क्या हमने कौमी एकता से भारत देश को आजाद कराया। हिंदू भी बोले, मुसलमान भी बोले और बातें चली कि हमने हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की ताकत से भारत देश को आजाद कराया। पता करें यह बातें उन कानों तक भी पहुंच जाए जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अंग्रेज बैठा हुआ था, इनकी बातों को बहुत देर से सुन रहा था। उसके बाद जो अंग्रेज ने बात कही वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अंग्रेज कहने लगा आहिस्ता से कि तुम लोगों ने आपस में मिलजुल करके हमको हुकूमत और कुर्सी से हटाया है, बाकी हिंदुस्तान की हर चीज में हम मौजूद हैं, हर चीज में हम मौजूद हैं, सिर्फ हुकूमत और कुर्सी से हटाया है। और उसके बाद उस अंग्रेज ने हिंदुओं को एक सवाल किया कि बताओ हिंदू लोगों के यहाँ विक्रम संवत के एतबार से तारीख चलती है, तो विक्रम संवत के एतबार से आज कौन सी कौन सा बरस चल रहा है और विक्रम संवत के एतबार से ये कौन सा महीना चल रहा है और आज कौन सी तारीख है, जरा मुझे जवाब दो। मुसलमानों से कहा हिजरी सन के एतबार से कौन सा साल है, कौन सा महीना है, आज कौन सा दिन है, वो मुझे बताओ। जब उस एक अंग्रेज ने मुसलमानों से और हिंदुओं से ये सवाल किया सब चुप हो गए। न हिंदुओं को पता कि विक्रम संवत के एतबार से कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सी तारीख, और न मुसलमान को मालूम कि हिजरत का कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सी तारीख। और उसके बाद वो अंग्रेज सवाल करता है दोनों से, बताओ अंग्रेजी कौन सा महीना है, कौन सा साल है, कौन सी तारीख है। अगर ये सवाल इस अंग्रेज का इस मजमे से मैं करूं गुस्ताखी माफ, 99% मुसलमान मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। 1% भी दे देंगे तो गनीमत कि हिजरी सन कौन सा, इस्लामी महीना कौन सा, इस्लामी तारीख कौन सी। लेकिन अगर अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी महीना, अंग्रेजी साल पूछूं शायद 100% भी कम पड़ जाए इतना जवाब आएगा। तो उस अंग्रेज ने यही सवाल किया, ए हिंदुओं तुमको तुम्हारी तारीख मालूम नहीं, ए मुसलमानों तुमको तुम्हारी इस्लामी तारीख मालूम नहीं, लेकिन तुम अंग्रेजी तारीख जानते हो। समझ लो हम हिंदुस्तान से गए नहीं है, हर चीज में अंग्रेज बैठा है, सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो गई है। आओ मिलजुल करके अर्ज़ करो, हमें अपनी तहजीब, अपना कल्चर, मुसलमान अपनी तहजीब, अपनी इस्लामी तहजीब, अपना लिबास, अपना कल्चर, अपनी चीजों को अपनाए। हिंदू भाई लोग अपना अपनाए, ये हमारी भारतीय संस्कृति इसकी खूबियां है। और जब तक हम अंग्रेजियत के गुलाम रहेंगे वहां तक इस मुल्क के अंदर कभी जोड़ और मोहब्बत नहीं आ सकती। आजाद हुए लेकिन अब तक अंग्रेजियत से आजाद नहीं हुए। कितने मुसलमान हैं, कि जो उर्दू फारसी अरबी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हो, कितने हिंदू भाई है जो संस्कृत भाषा में अपने बच्चों को तालीम देना शिक्षा देना पसंद करते हो, और कितने ऐसे हैं हिंदू हो के मुसलमान कि जिनकी पहली पसंद होती है हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिल करेंगे। दोनों कौम से मेरा पैगाम है, दोनों कौम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, आओ अपनी संस्कृति अपना कल्चर अपनी तहजीब उसको अपनाओ और उसके ऊपर आओ, तब जाकर के हम कह सकेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस वक्त सही होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बुजुर्गा ने वहां तरफ तिरंगा झंडा लहरा रहा है, कभी चिश्ती साहब को बुलाकर इसकी तारीफ सुन लेना कि तिरंगा झंडा फाइनल ये कलर करने वाले कौन, किसने ये तिरंगा झंडा बनाया, किसने ये फाइनल कलर चॉइस किए, तो शायद तुमको किसी मुसलमान का नाम नजर आएगा। हजरात ये झंडे को जरा गौर से देखो, कितने प्यारे प्यारे तीन कलर उसने दिए थे, ऊपर लाल जैसा केसरी कलर है, वो हम सबको दावत देता है कि मुल्क में इंसाफ आजादी सच्चाई का माहौल कायम करने के लिए अगर तुमको कुर्बानियां देनी पड़े तो उसके लिए तैयार रहो। इंसाफ सच्चाई हर कौम को उनको अपने राइट्स और हुकूक मिले, फंडामेंटल राइट्स बंधारण में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुकूक दिए वो हर कौम को पूरे पूरा मिले और देश का बंधारण सलामत रहे और देश में अदल इंसाफ सच्चाई का बोल बाला हो, ये केसरी रंग उसके लिए दावत देता है कुर्बानी की। और दूसरे नंबर के ऊपर सफेद रंग है, वो सब देशवासियों को एक मैसेज देता है कि बाहर में बाहर सफेद कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, इस देश के रहने वाले सबके दिल सफेद और गोरे होने चाहिए। का तुमने गोरी चमड़ी वालों को निकाला लेकिन अपने दिल जो काले हैं वो अभी दिल का मैल खत्म नहीं किया कि ये मजहब का ये धर्म का ये आगे नहीं आवे ये पीछे रहे ये मैल ये कालापन निकालना पड़ेगा और देश में रहने वाली तमाम कौमों के दिल आपस में सफेद और चमकते होंगे। जब ये दो भावनाएं आएगी तो हमारा मुल्क तीसरे नंबर पर पूरा हरा हरा और सरसब्ज सादा होगा। हजरात हरियालियां ऐसी नहीं हुआ करती, किसान से पूछो कितनी कुर्बानियों के बाद हरियालियां वजूद में आती है, मुल्क को आजाद कराया अंग्रेजों से लेकिन अभी और हमारा देश चाहे तो हम सब लोगों को उसके लिए तैयार रहना है। ये मुल्क हमारा एक रेवे एकता के साथ रेवे, और कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और मैं तो भाइयों को कहा करता हूं देशवासियों को कि पहला इंसान आदम अल्लाह ने उनको इस हिंदुस्तान में उतारा था, पहले इंसान आदम जिनको वेद में मनु कहते हैं उनको परमेश्वर ने अल्लाह ने खुदा ने हिंदुस्तान में उतारा था। फैसला था अल्लाह का कि आखिरी इंसान भी हिंदुस्तान का होगा, और जैसे आदम थे उसी कल्चर उसी मजहब पर आखिरी इंसान भी हिंदुस्तान का होगा। कभी इस मुल्क से तुम इस्लाम को मिटा नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इस्लाम को अमन और सलामती और शांति का मजहब बनाया है, हमारा दीन तो शांति की तारीफ देता है, अमन हो सलामती हो शांति हो प्यार हो قومی ایکتا ہو، محبت ہو، یہ ہم کو ہمارے نبی نے مبارک تعلیم دی ہے. لڑنا جھگڑنا یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. اسلام لڑنے جھگڑنے کو، ظلم کرنے کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے. اسلام نے تو ہم کو امن شانتی کی تعلیم دی، اسلام نے محبت کی تعلیم دی. آؤ یہ عزم لے کر کے اٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پکا مسلمان کون کا سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاوے، وہ سچا اور پکا مسلمان ہے. میرے آقا کے یہ مبارک الفاظ، نبی کی یہ مبارک باتیں، پیغمبر کی مبارک تعلیم اس وقت لے کر کے اٹھو، ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کام سے کسی کو انشاءاللہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ ہمارا دین ہم کو سکھلا ہے. دل مبارک، بہت پیارے، بہت ایتیاسک، بہت ہی تحقیقی باتیں، مضامین اور چھوٹے چھوٹے بیان پروگرام یہاں بچوں نے پیش کیے، بہت پیاری پیاری نظمیں ہوئی. اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارا ملک شانتی سے رہے، اور جو لوگ اس ملک کی شانتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ختم کرے. جو لوگ اس ملک میں رہنے والوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ختم کرے. یہ ملک، اس دیش کی دھرتی میں پیار ہے، محبت ہے، اور وہ پیار اور محبت اللہ ہمیشہ باقی رہے. میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. کافی دیر سے آپ حضرات بہت سارے لوگ کھڑے کھڑے وطن کی محبت میں، اپنے اکابرین کی محبت میں ان کی قربانیوں کو سننے کے لیے آج جمع ہو، کھڑے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں تا صبح قیامت عزت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور ہمارے ملک کو اللہ ہر نوع کی پرگتی اور ترقی عطا فرمائے، ہر نوع کے فتنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اس پروگرام میں آنے والے سب کو مبارکباد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.